नमस्कार भारत, तारीख 1 सितंबर, दिन मंगलवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। विधि आयोग ने कहा, आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामलों के अलावा न हो फांसी की सजा।
अगर ये रहनी चाहिए तो जिन जुर्मों के लिए मौत की सजा कानून में है उन सब के लिए रहनी चाहिए।
मणिपुर के चूड़ चंद्रपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों और स्थानीय सांसद के घर में लगाई आग, 2 लोगों की हुई मौत। पिछले 3 महीनों से मलेशिया में कथित तौर पर बंधक रहे 22 मजदूर छत्तीसगढ़ वापस लौटे।
चावल देता था 2 दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन खाना, फिर तुम फिर मार पड़ेगा, नहीं कोरोना था तो उसके बाद कहाँ गया, कहाँ लेना, पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद पता नहीं चला होगा कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला।
कार्यक्रम में खबरें होंगी और भी, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अविनाश दत्त से। केंद्रीय विधि आयोग ने आतंकवादी गतिविधियों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में फांसी की सजा खत्म करने की सिफारिश की है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने मौत की सजा पर रिपोर्ट नंबर 262 पेश की, जिसमें यह सिफारिश की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जिनसे पता लगता है कि सीरिया में ऐतिहासिक महत्व के पलमेरा शहर में 2000 साल पुराने बेल के मंदिर को नष्ट कर दिया गया है। शनिवार को स्थानीय लोगों ने बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी थीं, जिनके बाद यह अंदेशा हुआ था कि इस्लामिक स्टेट ने इन प्राचीन धरोहरों को नष्ट कर दिया है। इस्लामिक स्टेट इस इलाके पर मई से काबिज है। अब से कुछ ही घंटों बाद अमेरिका का विदेश मंत्रालय पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन के हजारों ईमेल सार्वजनिक करेगा। इन ईमेल में ऐसे 150 मेल भी हैं जिनके बारे में कहा गया था कि इनमें खुफिया जानकारी शामिल है। क्लिंटन पहले ही अफसोस जता चुकी हैं कि उन्होंने निजी सर्वर्स का इस्तेमाल करते हुए सरकारी ईमेल भेजने के लिए किया। FBI इस बात की जांच कर रही है कि कहीं कोई गोपनीय जानकारी गलत तरीके से बाहर तो नहीं चली गई। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिलेरी का निजी सर्वर से ईमेल करना एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा, हम एकदम साफ हैं, हमने जो अब तक पढ़ा उसमें कुछ खुफिया नहीं था। अगर मेल लेकिन बावजूद उसके अगर मेल से जानकारी भेजते समय, पाछते समय या हिलेरी के हैंडल करते समय कभी भी कोई खुफिया चीज़ थी तो खुफिया ही मानी जाएगी। हम ऐसी ईमेल की तादाद अभी तक 150 मानते हैं, अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश एर्नेस्ट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐसे कई रास्तों पर विचार कर रहे हैं जिससे गुंतानामो बे में मौजूद अमेरिकी जेल को बंद किया जा सके। एर्नेस्ट ने कहा कि ओबामा इसके लिए सीधे सरकारी आदेश भी जारी कर सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार संसद के पास जाना सबसे अच्छा रास्ता है। तुर्की में 3 ब्रितानी पत्रकारों को चरमपंथियों की मदद करने के आरोप में रिमांड पर भेज दिया गया है। ये पत्रकार अमेरिकी समाचार संस्था वाइस न्यूज़ के लिए काम कर रहे थे। ये लोग तुर्की की कुर्द बहुल इलाके दियरबाकिर में काम कर रहे थे। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट और PKK की मदद कर रहे थे। पत्रकारों ने इन आरोपों का खंडन किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में मौजूद 90% समुद्री पक्षियों के पेट में प्लास्टिक मौजूद हो सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। bbchindi.com पर भी आप ये कार्यक्रम लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत में फिर से फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पर बहस गर्म है। विधि आयोग ने फांसी की सजा चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि सिर्फ आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामले में ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाह ने कहा कि कमीशन के 9 में से 6 सदस्य रिपोर्ट से सहमत हैं, 3 असहमत सदस्यों में से 2 सरकार के प्रतिनिधि हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत हमारे संविधान की बुनियादी भावना के खिलाफ है। बदले की भावना से न्यायिक तंत्र नहीं चल सकता। जस्टिस एपी शाह ने कहा,
वी डू नॉट वी हैव नो सिंपैथी फॉर एनी क्रिमिनल और एनी पर्सन हु हैज
जस्टिस शाह कह रहे थे कि हमें अपराधियों के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं है या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ जिसने गलत काम किया है। हालांकि हमारा मानना है कि अपराधियों के लिए मृत्युदंड दिए जाने की प्रणाली सही तरीके से काम नहीं कर रही है। विधि आयोग के 3 सदस्यों ने इसका विरोध किया, फांसी की सजा बरकरार रखने का समर्थन किया। हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील KTS तुलसी से संपर्क साधा और पूछा कितनी व्यावहारिक है ये सिफारिश।
मैं समझता हूँ कि लॉ कमीशन की सिफारिश है ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि या तो मौत की सजा रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि सिर्फ आतंकवाद के लिए रहनी चाहिए तो अब तो कोई आतंकवाद विरोधी कानून ही नहीं है, और अगर ये रहनी चाहिए तो जिन जुर्मों के लिए मौत की सजा कानून में है उन सब के लिए रहनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले गाइडलाइंस ले डाउन की हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में होनी चाहिए, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो जो अदालत का अधिकार है, डिस्क्रिशन है, अदालत को फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि कहाँ मौत की सजा होगी कहाँ नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि लॉ कमीशन को कहना तो यही चाहिए था कि मौत की सजा सिर्फ कम से कम 5 जजेस का बेंच तय करे, और मौत की सजा तभी दी जाए जब 5 के 5 जजेस मौत की सजा के हक में हो।
एक चीज और है कि इसमें जो लॉ कमीशन ने कहा है कि मृत्युदंड को खत्म करने के कई विकल्प हैं, तो ऐसे क्या विकल्प हो सकते हैं या क्या लॉ कमीशन ने सुझाए हैं कि जिनको मृत्युदंड के बदले में उसको लाया जा सकता है, उन कानूनों को या उस प्रावधान को?
मैं समझता हूँ कि मृत्युदंड के मुकाबले में कोई भी और ऐसा दंड नहीं है जो के कानून का है, कानून का खौफ मुल्जिमों के दिमाग में पैदा कर सके। बहुत सारे लोग इतने हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं कि उनको किसी कानून का भय नहीं होता, मगर उनको अगर भय है तो फिर भी मौत से डरते हैं। तो इसलिए मौत की सजा जो है इसको कम से कम कानून में रहना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और भारत ने मिसाल कायम की है कि दुरुपयोग हमने बिल्कुल नहीं किया। पिछले 60 साल में सिर्फ 57 लोगों को मौत का दंड एग्जीक्यूट हुआ है।
सर, ये 9 मेंबर का कमीशन है और इसके सारे सदस्यों ने इस पे सहमति नहीं दी है, 3 सदस्यों ने पूरी तरह से इससे अपने को अलग किया है, तो कितनी उम्मीद है कि सरकार इस सिफारिश को मानेगी या मान सकती है?
ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। मेरे को लगता है कि जो पार्लियामेंट है वो भी मौजूदा स्थिति के लिए के साथ बिल्कुल सहमत है और उसे संतुष्ट है, इसमें कानून की तब्दीली की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये थे वरिष्ठ वकील KTS तुलसी। तो खबर यह है कि विधि आयोग ने कहा है कि आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामलों के अलावा न हो फांसी की सजा। मणिपुर के चूड़चंद्रपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने राज्य सरकार के 2 मंत्रियों, 5 विधायकों और स्थानीय सांसद के घर में आग लगा दी है। पुलिस के अनुसार आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। अब से कुछ देर पहले मैंने संपर्क साधा गुवाहाटी में मौजूद स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा से और पूछा कि मणिपुर में ये जो हुआ ये कैसे हुआ।
घटना मणिपुर के चूड़चंद्रपुर की है और कल मणिपुर विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ था जिसमें ट्राइबल इलाकों के जो जमीन है उसमें ये कहा गया था कि ये जमीन अब से मैथेज से लेकर दूसरी जो डेवलप्ड जो जातियां हैं वो भी खरीद सकेगी। इसको लेकर कुकी समुदाय में खास करके पहले से नाराज थे और इसका विरोध कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपना विरोध जताते हुए शाम को करीब 6 बजे उसी इलाके में 2 मंत्री और 4 विधायकों के घर जला दिए और वहाँ सांसद का भी घर था जला दिया। उनका कहना है कि भाई ये व्यवस्था काफी पुरानी है, मतलब ब्रिटिश सरकार से चली आ रही है कि हमारे ट्राइबल बेल्ट की जो जमीन है उसमें दूसरे लोग वहाँ नहीं बैठ सकते। और सरकार ने कल 3 विधेयक पारित किए थे जिनमें से ये जमीन से जुड़ा हुआ जो विधेयक था ये भी था। तो उनका कहना है कि भाई जब आप जिन लोगों के घर जलाए गए हैं, इनका कहना था कि जब आप विधानसभा में मौजूद थे तो आपने इस विधेयक को पारित कैसे आने दिया, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया।
पुलिस ने क्या किया इस दौरान?
मेरी बात हुई थी पुलिस से और ये अचानक से इतनी बड़ी तादाद में हिंसा हो जाएगी, पुलिस को इसका अंदाजा नहीं था। अचानक से भीड़ ने ये काम किया। विधानसभा का सत्र चल रहा था इसलिए मंत्री और विधायकों घर पे तो कोई थे नहीं, जो सर्वेंट वगैरह थे, तो अचानक से इन्होंने ये घर पर इन्होंने आग लगा दी। और जब पुलिस पूरे भीड़ को जब रोकने की कोशिश की तो उनके साथ पुलिस के साथ भी इनकी झड़प हुई। और पुलिस के साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई फायरिंग भी की गई। इस बीच फायरिंग में एक व्यक्ति मारा गया और एक व्यक्ति घर को आग लगाते वक्त खुद झुलस गया और इस वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस कल रात से इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। अभी भी खबर आ रही है वहाँ की छात्र संगठन के एक नेता से, लोग काफी गुस्से में हैं और अब भी हिंसा के फिराक में है। पुलिस ने पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, पुलिस चाह रही है कि भाई इस तरह की हिंसा और ना हो।
ये थे गुवाहाटी से स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा, जो की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मणिपुर के चूड़चंद्रपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों और स्थानीय सांसद के घर में आग लगा दी है। मलेशिया में पिछले 3 महीनों में कथित तौर पर बंधक बनाकर रखे गए छत्तीसगढ़ के 22 मजदूर कल छत्तीसगढ़ वापस पहुंच गए। विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद इन मजदूरों को छुड़ाया गया है। सरकार का कहना है कि इस तरह से मजदूरों को बंधक बनाए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
इस साल जुलाई में छत्तीसगढ़ के 22 मजदूरों के एक दल को मलेशिया में कथित तौर पर बंधक बनाए जाने की शिकायत मजदूरों के परिजनों ने पुलिस से की थी। परिजनों का आरोप था कि मजदूरों के वीजा पासपोर्ट छीन लिए गए हैं और उन्हें पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे काम लिया जा रहा है। इन शिकायतों के बाद से ही राज्य के श्रम मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इन मजदूरों को छुड़ाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लगभग 1.5 महीने बाद सभी 22 मजदूरों को मलेशिया से मुक्त कराया गया और सोमवार को ये मजदूर मलेशिया से रायपुर पहुंचे। हर मजदूर के हिस्से प्रताड़ना के अपने किस्से थे।
ना मिलता था, ना दवाई नहीं मिलता था, 10 किलो चावल देता था 2 दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन खाना, फिर तुम फिर मार पड़ेगा नहीं कोरोना का।
तो उसके बाद कहाँ गया, कहाँ लेना वो पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद कहाँ पता नहीं चला, वो कहाँ गया, कहाँ का कुछ पता नहीं चला। हम लोग काम करते थे, हमें बहुत बदतर जिंदगी जीना पड़ रहा था। सौभाग्य की बात है कि हमारे श्रम मंत्री रजवाड़े महोदय वहाँ से हमें बचा कर यहाँ इंडिया ले आए।
को सर पैसा मिला नहीं, वहाँ से किसी को 100 रिंगिट 200 रिंगिट ऐसे करके कुछ कुछ मिला। जाने के पहले दीप के बंद मेरे को बोला था 20,000 दूंगा बोला था, कुछ भी पैसा नहीं मिला।
छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े का कहना है कि भोले भाले मजदूरों को बड़ी रकम का लालच देकर फंसाया जाता है। उनका दावा है कि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ।
गांव में सीधे साधे लोग हैं, पढ़े लिखे ज्यादा होते नहीं, उनको लालच देते हैं। कुछ तो उनके परिजन को जो है उनको बोलेंगे 20,000-50,000 तुम एडवांस ले लो, तुमको 40,000-50,000 रुपया वहाँ तनख्वाह मिलेगा। ये लालच में आकर के फंस जाते हैं। 2-4 लोग जो दलाल हैं वो अंदर होंगे, जमानत नहीं होगा, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी, सजा होगा, तो धीरे धीरे सब ये बंद हो जाएगा।
क्या राज्य में रोजगार का अभाव है? श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े इस सवाल का खंडन करते हैं।
यहाँ रोजगार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भरपूर रोजगार है। यहाँ के लोग बता रहा हूँ ना, इकट्ठा जो लालच दे देते हैं ना, 25,000-50,000 लालच दे दिए, थोक मिलता है और लालच में आ जाते, फंस जाते हैं। ये तो यहाँ रोजगार की कमी थोड़ी है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है जब से यहाँ के लोगों आते नहीं है, वो यूपी और बनारस के लोग यहाँ काम करने आ रहा है।
लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि राज्य सरकार रोजगार के मामले में फिसड्डी साबित हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सिंह का कहना है कि अलग राज्य बनने के बाद भी पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ से मजदूरों का पलायन कम नहीं हुआ है।
छत्तीसगढ़ में रोजगार की स्थिति बेहद खराब है, लाखों मजदूर हर साल पलायन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मजदूर आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर जगह दिख जाएगा। और मनरेगा जैसी योजनाएं भी बहुत अधिक सफल नहीं है इस राज्य में। 42 लाख परिवार रजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी मुश्किल से 32 दिन ही काम मिला है। और अगर आंकड़ों पर जाएं तो 600 करोड़ की मजदूरी कई महीनों से अभी भी बकाया है। ऐसे में तो मजदूर पलायन करेंगे ही।
फिलहाल मलेशिया से मुक्त होने के बाद सारे मजदूर अपने अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन इस बात की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है कि इन मजदूरों को अपने ही गांव घर में काम मिल पाएगा और इनके फिर से बंधक बनने की नौबत नहीं आएगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
इनको पहले 2 गोलियां लगी, फिर 2 गोलियां और लगी, और वो अटैक आगे बढ़ते गए। उसके बाद में ब्रूटल बेनेट फाइट हुई।
कहता साहब मैंने तो मर जाना है, हम हमला करने आए हैं, आप आगे चलिए, मेरी परवाह मत करो। उसने मेरे से बात की, अपना ट्रिगर दबाया, एक ग्रेनेड गया, मैंने पूछे मुड़ कर देखा,
कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है।
साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर सुनिए रेहान फजल की एक खास पेशकश 1 सितंबर से शाम में दिन भर और सुबह विश्व भारती में।
तो ये कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बैठक के बाद नेता बोले कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कोई हल नहीं निकला। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
बिहार में विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां चौथी जनसभा करने वाले हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि सोमवार को एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे पर कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन मामला अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया, बताया लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने।
हम लोगों का एक इनफॉर्मल बातचीत क्या कहते हुई है कि कैसे पार्टी को, कैसे एनडीए को मजबूत किया जाए और कैसे दो तिहाई बहुमत से हम जीत करके आवे। सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है, एक हफ्ता के अंदर में हम लोगों का पूरा हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के घर पर काफी देर चली बैठक का कोई नतीजा भले न आया हो, लेकिन बाहर निकले नेताओं ने बैठक के माहौल को सौहार्दपूर्ण बताया। एनडीए के एक अन्य घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि सीट बंटवारे पर घटक दलों में किसी तरह का टकराव नहीं है।
पहले अलग अलग पार्टी की ओर से अलग अलग बातें कही जा रही थी, लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है, जो निर्णय होगा हम उसी को शेयर करेंगे आपके बीच, बाकी और बात बाहर शेयर करने की जरूरत नहीं है।
नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि सहम मसले पर अभी दोबारा बैठक होगी, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन जाएगी और एक हफ्ते में सीटें बांट भी ली जाएंगी। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि बातचीत के लिए सिर्फ कुछ लोगों को ही अधिकृत किया गया है और सहयोगी दलों को सार्वजनिक बयानबाजी के लिए मना किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना था,
एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और एक वार्ता का दौर आज शुरू हुआ है और हम समझते हैं कि 6-7 तारीख के आसपास तक सारा मामला तय हो जाएगा।
वहीं एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी का मसला भी काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का कहना था,
प्रधानमंत्री जी और सब मिलकर जो तय करेंगे वही होगा। मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की चिंता मत कीजिए, यहाँ पर एक दर्जन योग्य सक्षम और दमदार लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा योग्यता सक्षम रखने वाले सक्षम लोग हैं।
दरअसल इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अंदरूनी मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भाजपा को पहले की तरह 102 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह दी और बाकी 141 सीटें सहयोगियों को देने की मांग कर रखी है। वही जानकारों का कहना है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर 160 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अगली बैठक में इस पर कुछ फैसला होता है या नहीं। समीर आत्मज मिश्र, BBC दिल्ली।
तो ये समीर की रिपोर्ट हम सुन रहे थे, किस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी। अविनाश दत्त मौजूद हैं। अविनाश, अखबार क्या कह रहे हैं?
सबसे पहले मेरे सामने दैनिक जागरण है, ये इसमें बड़ी खबर छपी हुई है, यही जो अभी जिसका समीर जिक्र कर रहे थे कि सहयोगियों के लिए 75 सीटें छोड़ने का संकेत। वैसे इस तरह की खबरें, ये खबर तो करीब करीब हरी जगह है और ये खबर भी करीब करीब हर जगह है कि जो हम सबसे पहले हमने अपने कार्यक्रम में सबसे पहले सुना कि फांसी की सज़ा के ऊपर जो विधि आयोग की सिफारिश है उसके ऊपर भी विस्तार से लिखा हुआ है कई अलग अलग अखबारों में। एक और खबर है जिसका जिक्र हमारे कार्यक्रम में नहीं हुआ इसलिए कर देता हूँ, अभी मेरे सामने हिंदुस्तान है, इसमें लिखा हुआ है पेंशन में हर साल संशोधन संभव नहीं, ये कहा है अरुण जेटली ने, संदर्भ है सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन का जो वो है, और ये 78 दिन से इनका आंदोलन चल रहा है और 16 दिनों से कई पूर्व सैनिक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे और अब इस सरकार में मंत्री हैं जनरल बीके सिंह, उनके रिटायर्ड जनरल बीके सिंह, उनकी बिटिया भी बैठी हुई हैं समर्थन कर रही हैं। वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा है कि भाई हम सैनिकों की जो पेंशन है वो हर साल नहीं बढ़ा सकते हैं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, और अगर इसमें इतना इस तरह से संभव नहीं है, हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें पूर्व सैनिकों ने कहा है कि वो हर साल इस बात की मांग नहीं कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अगर आप हर साल न बढ़ाएं तो दो साल में एक बार बढ़ाएं। इसके अलावा नई दुनिया का जिक्र करूं तो सबसे पहले इसमें खबर छपी है संथारा से रोक हटी, और किसी और अखबार में खबर छपी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था उस पर स्टे लगाने के लिए, संथारा पर से रोक हटाने के लिए।
यहाँ पर अपने श्रोताओं को बता दें जो संथारा है वो जैन मतावलंबियों की जो प्रथा होती है, और उसी प्रथा
अन्न जल त्याग करके अपना प्राणदान होता है या समाधि लेना कहते हैं उसको, वो समाधि लेते हैं, तो उसके ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट ने वो लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने करीब एक मिनट यानी 60 सेकंड में ये ख़त्म कर दी। इसके अलावा एक और खबर यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है कि 7% GDP की ग्रोथ रही, पहली तिमाही में 7.5% थी, यानी देश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है और जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हो रही है। और ख़ासतौर पर जो कोर सेक्टर हैं यानी कि कोयला, स्टील, कच्चा गैस, नेचुरल गैस जो कि ऊर्जा देता है देश को, बिजली खपत बढ़ाता है, ये सब वो परिलक्षित करता है और उन सब में
गिरावट दर्ज की गई। और यही पर बता दें कि ये जो 8.1 सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसे GDP को हासिल करना चाहती है सरकार
जी। बस एक और खबर चलते चलते बता देता हूँ, पहली बार पाकिस्तान में किसी को मिली हिंदी में MPhil, ये जनसत्ता में ये खबर छपी हुई है। पाकिस्तान में उर्दू का बाना पहनकर हिंदी ने अपनी पहचान बना रखी हो, लेकिन ये ऐसा ऐसा अखबार का कहना है। और इस PhD का विषय था स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में नारी चित्रण, ये शाहीन जफर हैं, इनको मिली है PhD जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। विशेष रिपोर्ट का वक्त है, कुछ लोग थोड़ा सा रुक रुक कर बोलते हैं जिसे कि हम हकलाना कहते हैं। ऐसे लोगों की दिक्कतें हम आए दिन अपने आसपास अक्सर देखते हैं। ऐसे ही कुछ लोग दिल्ली में हर रविवार मिलते हैं अपनी समस्या के साथ, आपस में खुलकर बात करते हैं, और इन्हीं लोगों के बीच जा पहुंची हमारी सहयोगी इंदु पांडे और वहाँ उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की।
पहली ही मुलाकात में अगर कोई अपने नाम पर अटक जाए तो भला आगे की कहानी कैसे चलेगी?
ना ना नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरा नाम आ आ अभय शंकर है।
जो भी व्यक्ति हकलाता है उसके मन में सिर्फ यही विचार आता है कि कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन यानी कि TISA ऐसी एक सोसाइटी है जो इस तरह के लोगों के ऊपर काम करती है। डॉक्टर सतेंद्र श्रीवास्तव जो कभी खुद भी बहुत हकलाते थे अब कहते हैं,
हम इसको एक्चुअली हम अब ये कहना चाहते हैं कि ये एक ना तो बीमारी है ना आदत है, ये एक डाइवर्सिटी है। ये कुछ लोग धारा प्रवाह बोलते हैं, कुछ लोग रुक कर बोलते हैं, कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं
और कुछ लोग अटक कर बोलते हैं। भारत के लगभग 25 शहरों में ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं और साल में एक बार सब लोग मिलते हैं अपनी अपनी समस्याओं के साथ कि कैसे खुद को ठीक किया जा सके।
मैंने महसूस किया कि हकलाने में सबसे बड़ी समस्या ये कि समाज इसके बारे में बात नहीं करता और हम भी बात करने को तैयार नहीं है, और इसलिए जो है वो सारा मुद्दा ढका छुपा रहता है और उस शर्म और उस डर को लेके हम जीने की कोशिश करते हैं।
फिल्मों में जब हम देखते हैं जो ज्यादातर कैरेक्टर ऐसे कॉमिक के लिए रखे जाते हैं जो हकलाते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है?
सिर्फ बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के भी, तो जो फिल्म में जो रिप्रेजेंटेशन है कोई भी स्टैमर का वो बहुत ही जनरली नेगेटिव है, और ऐसा है जैसे कोई वीक पर्सनालिटी हो जो नर्वस हो या ये हो, एंड जनरली उसको थोड़ा फूलिश भी दिखाते हैं।
लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि हकलाना और दिमाग दोनों का कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर सतेंद्र श्रीवास्तव ने ऐसी ही एक पॉजिटिव स्टोरी हमारे साथ शेयर की
कि मुझे हकलाने को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। तो उसके बाद उसका कैंपस इंटरव्यू था, तो उसमें जब वो गया तो उसने जाते ही पहले बोल दिया कि एक्सक्यूज मी आई समटाइम्स स्टैमर एंड इफ आई स्टैमर इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसने ऐसे बोला। अच्छे लोग थे, उन्होंने बोला कि थैंक यू वेरी मच बट वी आर हियर टू असेस योर नॉलेज एंड यू आर फ्री टू स्टैमर एज मच एज यू वॉन्ट।
और उसके बाद हकलाहट कहीं भी इनके लिए बाधा नहीं बनी, यानी कि सारा खेल शर्म, डर और झिझक का ही है। जितना इनका साहस के साथ सामना करेंगे उतना ही जीवन आसान होगा। जरा सोचिए कि आप बचपन से हकलाते आ रहे हैं और लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप हकलाते हैं, फिर हकलाहट पर खुलकर बातचीत करने में भला कैसी शर्म। इस सोसाइटी में आने वाली माधवी का कहना है
मेरे को तो ज़्यादा दिक्कतें हैं फिलहाल तो, लेकिन मैं जो है एक गांव से हूँ, मतलब राजस्थान, तो जहाँ पे वहाँ पे जो मेरी दादी हैं, काफ़ी सारी ताइयाँ हैं, तो उनको एक तो मेरी हाइट कम है और थोड़ा ब्लैकिश हूँ और ऊपर से स्टैमरिंग है, तो वो बोलते हैं ये तो नहले पे धैला हो गया, मतलब मेरे को और डीमोटिवेट करते हैं, बट इट्स ओके।
हकलाने पर कई सालों से काम कर रहे डॉक्टर श्रीवास्तव तो यही कहते हैं,
अपने दिल में झांक कर देखें और अपनी कमियों को देखें और थोड़ा बेनंबर होना सीखें।
हम लोग अवेयरनेस के लिए भी बहुत चीज़ हम लोग करते हैं, लाइक अभी हम लोग मीटिंग में लास्ट में एक राउंड हम लोग रखते हैं वॉलंटरी स्टटरिंग का, जिसमें हम बाहर जाते हैं, मॉल में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, बाहर जाते हैं और लोगों को बताते हैं दिस साइड एसोसिएशन एंड वी आर वर्किंग फॉर दोज हु स्टैमर, जिनको ये प्रॉब्लम है हम उनके लिए काम करते हैं और आप संडे को मीटिंग में आ सकते हैं।
और हर संडे जो ये मीटिंग होती है वहाँ पे इन्हें यही सिखलाया जाता है कि हकलाओ मगर प्यार से। इंदु पांडे, BBC दिल्ली।
और इस रिपोर्ट के बाद अब वक्त है खेल की खबरें सुनने का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन आज जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी तो उसका एकमात्र लक्ष्य श्रीलंका के बचे हुए 7 विकेट झटक कर मैच और सीरीज जीतना होगा। भारत ने कल श्रीलंका के सामने जीत के लिए 386 रनों का लक्ष्य रखा और कल स्टंप के समय उसका स्कोर 3 विकेट खोकर 67 रन था, यानी श्रीलंका को अभी भी जीत के लिए 319 रनों की दरकार है। अगर मौसम ने खलल नहीं डाला तो भारत श्रीलंका में सीरीज जीतने के 22 साल के सूखे को समाप्त कर सकता है। कल स्टंप के समय कप्तान एंजेलो मैथ्यूज 22 और सलामी बल्लेबाज कौशल सिल्वा 24 रन बनाकर खेल रहे थे। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 14 रन देकर 2 और उमेश यादव ने 32 रन देकर 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत की दूसरी पारी कल 274 रनों पर समाप्त हुई। आर अश्विन ने 58, रोहित शर्मा ने 50 और स्टुअर्ट बिन्नी ने 49 रन बनाए। इनके अलावा अमित मिश्रा ने भी 39 और विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने 35 रनों की उपयोगी पारी खेली, वरना एक समय तो भारत के 4 विकेट केवल 64 रन पर गिर चुके थे। इस टेस्ट मैच में फिलहाल जो स्थिति है उसे लेकर भारत के रोहित शर्मा ने कहा,
बैटिंग ऑन द फिफ्थ डे चेजिंग हैविंग अ टारगेट ऑफ 380 प्लस इज नेवर इजी फॉर एनी ऑपोजिशन। सो
मैच के आखिरी दिन जीत के लिए 380 से अधिक रनों का लक्ष्य का पीछा करना किसी भी विरोधी टीम के लिए आसान नहीं है। इस मैच में पिछले मैच जैसी ही हालत है जब उनके 3 विकेट गिरे थे और हमने उन्हें जीत के लिए इससे मिलता जुलता लक्ष्य ही दिया था, तो हमारे पास एक मौका है जिसका हम फायदा उठाना चाहेंगे, रोहित शर्मा के शब्द। निश्चित रूप से श्रीलंका के लिए अब भारत के शिकंजे से निकलना आसान नहीं है। उधर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन में रूस की तीसरी वरीयता हासिल मारिया शारापोवा ने पैर में चोट के कारण अपना नाम वापस ले लिया है। इससे रूस की डारिया कासित्किना को मौका मिला। इस बार अमरीकी ओपन में पुरुष एकल वर्ग में भारत का कोई भी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन महिला युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस अपनी चुनौती पेश करेंगी। उनके अलावा पुरुष युगल वर्ग में भारत के लिए पेस और रोहन बोपन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ अपना दावा पेश करेंगे। वहीं बैंकॉक में जारी एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल भारत के मनोज कुमार ने 64, मदन लाल ने 52 और कुलदीप सिंह ने 81 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।
और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। केंद्रीय विधि आयोग ने आतंकवादी गतिविधियों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में फांसी की सज़ा को ख़त्म करने की सिफारिश की है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी सैटेलाइट की तस्वीरें जारी की हैं जिनसे पता लगता है कि सीरिया में ऐतिहासिक महत्व का पलमेरा शहर में 2000 साल पुराने बेल के मंदिर को नष्ट कर दिया गया है। अब से कुछ घंटों बाद ही अमेरिका का विदेश मंत्रालय पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के हजारों ईमेल सार्वजनिक करेगा। इन ईमेल में ऐसे 150 मेल शामिल हैं जिनके बारे में कहा गया था कि इनमें खुफिया जानकारी है। तुर्की में 3 ब्रितानी पत्रकारों को चरमपंथियों की मदद करने के आरोप में रिमांड पर भेज दिया गया है। पत्रकारों ने इन आरोपों का खंडन किया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। अब एक घंटे बाद यानी कि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।